मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घाय तिलगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाविदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहत्षे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो आज हम भगवान का दामोदर लीला के बारे में चर्चा करेंगे। तो भागवतम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के नौवे और दसवें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की इस लीला के बारे में डिटेल में बता रहे हैं पूरे विस्तार में। तो परीक्षित महाराज को जब वो कथा सुना रहे हैं तो कथा के शुरू में पहले भागवतम का महात्म्य बताया गया। भागवतम है क्या और भागवत का महात्म्य क्या है। तो बोलते हैं कि अगर भागवत पढ़ते हैं तो भागवत पढ़ने और भागवत सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य सब कुछ तीनों चीजें मिल जाती हैं। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी अपने आप आ जाता है भागवत पढ़ने भागवत सुनने से। जैसे कि अगर कोई भोजन करता है तो भोजन करने से भूख भी मिट जाती है, जो शुदा है वो शुदा शांत होती है, साथ ही साथ जो तुष्टि है तुष्टि भी होती है और पुष्टि भी मिलती है। तो तुष्टि संतुष्टि पुष्टि तीनों चीजें मिलती हैं भोजन करने से। शुदा भी शांत होती है, टेस्ट भी मिलता है और शरीर को नरिशमेंट भी मिलता है, पुष्टि भी मिलती है। उसी प्रकार भागवतम पढ़ने सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों चीजें मिलती हैं। तो ये भागवत का महात्म्य है। और भागवतम के दशम स्कंद में भगवान की लीलाओं के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी विस्तार में वर्णन कर रहे हैं। तो दशम नवम अध्याय में भगवान की दामोदर लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो भगवान की जो अद्भुत लीलाएं चल रही हैं, भगवान गोपियों के घर में जाते हैं, मक्खन चुराते हैं, बछड़ों के साथ खेलते हैं, गैया के साथ खेलते हैं, गैया चराने जाते हैं। तो भगवान की अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। और भगवान की जो सबसे रोचक लीला है कि वो गोपियों के घर में जाते हैं और गोपियों के घर से मक्खन चुरा कर खाते हैं। वो अकेले नहीं जाते, पूरा का पूरा अपना बाल सखा का गैंग, पूरा अपनी टोली लेके जाते हैं। गोपियां सुबह सुबह मक्खन बनाती हैं, वो अपने छज्जे पे मटकी को टांगती हैं और भगवान जाते हैं उनके घर पे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। सबको लग रहा है कि सब सो रहे हैं अभी, पर भगवान अपना बच्चों की पार्टी के साथ अपने टोली के साथ जाते हैं सुबह सुबह, उनके घरों से मक्खन चुराते हैं। अगर मक्खन को उन्होंने ऊपर ज्यादा हाइट पे भी टांगा हुआ है तो भगवान, जैसे बोलते हैं कि ह्यूमन पिरामिड, तो उसको बना के एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मक्खन निकालते हैं और खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं। खुद सिर्फ बच्चों को ही नहीं खिलाते, वो बाकी मंकी जो बंदर भी हैं पूरे वृंदावन में, सब बंदरों को भी मक्खन खिलाते हैं। अगर उनका हाथ नहीं पहुंचता ऊपर मटकी पे तो पत्थर मारकर मटकी को तोड़ देते हैं और सारा मक्खन गिरा देते हैं। और अगर कभी उनको मक्खन का स्वाद पसंद नहीं आए तो वो गोपियों के बच्चों को चिमटी काट के भाग जाते हैं, बच्चों को रुलाकर। और अगर मक्खन पसंद, कभी कभी मक्खन पसंद नहीं आया और तो गोपियों को गालियां देने लगते हैं कि तुमने एक ऐसा मक्खन बनाया है, तुम्हें मक्खन बनाना नहीं आता। तो भगवान की ये सब ऐसी अलग अलग रोचक लीलाएं चल रही हैं। और सब गोपियां अंदर से, तो उनका भाव है कि कृष्ण आए हमारे घर पे, आए मक्खन खाएं, भगवान के लिए ही मक्खन बना रही हैं। पर बाहर से वो अपना क्रोध व्यक्त करती हैं। यशोदा मैया के पास जाएंगी, बोलेंगी देखो तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा काना हमारे घर पर आता है, सारा मक्खन खा जाता है, अगर मक्खन पसंद नहीं आता तो हमारे बच्चों को चिमटियां काट कर उनको रुला देता है। तो इस तरह से जाके मदर यशोदा के पास, मैया यशोदा के पास जाकर कन्हैया की कंप्लेंट करती हैं। मैं एक बार ऐसे ही सब गोपियां आई माता यशोदा के घर घर पे, उनके पास आई और कन्हैया की कंप्लेंट करने लगी, तुम्हारा लल्ला सुबह सुबह हमारे घर पर आता है और सारा मक्खन खा जाता है। तो मैया यशोदा ने बोला, नहीं मेरा कन्हैया तो अंदर है, वो तो अभी सो रहा है। तो मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, काना इधर तो आओ। तो कन्हैया उठकर आए, कृष्णा उठकर आए, तो देखा सब गोपियों ने देखा, अरे कन्हैया तो यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर पहले तो वो सब बच्चों के साथ हमारे घरों में मक्खन खा रहा था। तो कन्हैया के मन में, के मुंह पे एक बार मक्खन लगा होता है, तो मैया पूछते ये मक्खन कहाँ से लगा। तो उन्होंने बोला, ये तो सब गोपियां जबरदस्ती मुझे पकड़कर मेरे मुंह पे जबरदस्ती मक्खन लगा देती हैं, मैं इनके घर पे खाने नहीं जाता, ये जबरदस्ती मुझे बुलाती हैं और जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा देती हैं, और फिर आकर कंप्लेन करती हैं कि मैंने इनके घर पे जाकर मक्खन खाया। तो इस प्रकार भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं चल रही हैं, जो सबके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में इन लीलाओं से संदेह उत्पन्न होता है कि ये भगवान है क्या, ये जो कृष्ण है, बेबी कृष्ण, बाल कृष्ण है, ये क्या सचमुच में भगवान है जो इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं। क्योंकि तो लोगों को लगता है कि अगर भगवान है तो भगवान को दूसरों के घर पे जाकर चुराने की क्या जरूरत है, तो ऐसे कैसे भगवान है कि जो दूसरों के घर पे जाकर मक्खन चुला रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए कि कृष्णा ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, वो स्वयं परम भगवान है। और भगवान के नाते जितना भी सब इस जगत में सब कुछ है, वो भगवान की प्रॉपर्टी है। अगर हम एक मिनट के लिए ये पहले इस बात को मान लें कि कृष्णा भगवान है, तो अगर वो भगवान है तो सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, तो इसमें चुराने का प्रश्न ही कहाँ से आया। अगर सब कुछ भगवान की संपत्ति है तो भगवान अपनी संपत्ति को जाकर उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कृष्णा इज फेमस एज माखन चोर, वो मक्खन चोर के नाम से पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हैं। ब्रजेर वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानम चदकूल चोरम श्री राधिकाया हृदयासि चोरम अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम तम पुरुषम नमामि। तो इस प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, ब्रजेर वसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में एक माखन चोर रहता है और क्या चुराता है वो, गोपांगना नाम चदकूल चोरम, वो गोपियों के चीर को भी चुराता है। श्री राधिकाया हृदयासि चोरम, और श्री राधिका का हृदय चुराता है। ये सब चुराने के साथ साथ और क्या चुराते हैं भगवान, अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, हमने अपने अनेक अनेक जन्मों में जितने पाप अर्जन किए हैं भगवान, उन सब पापों को भी हमारे हृदय से चुरा लेते हैं, हमारा हृदय को साफ कर देते हैं। चोराग्रगण्यम तम पुरुषम नमामि, उस चोरों के सरदार को, उस चोरों के लीडर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भगवान के लिए प्रार्थना है, जो संतों ने ये प्रार्थना लिखी है कि भगवान मक्खन चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान जो भी लीला करते हैं, अगर भक्तों ने माखन चोर नाम भी दे रहे हैं तो भगवान उस नाम को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान की इस तरह से अद्भुत अद्भुत लीलाएं चल रही हैं। जब गोपियां आती हैं मैया यशोदा के पास कंप्लेन करने के लिए, और यशोदा मैया को कई कई बार बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि ये सब मेरे घर पर आकर मेरे बाल गोपाल के लिए शिकायत कर रहे हैं, तो मेरे घर में मक्खन की कमी है क्या? मेरा लल्ला इनके घर पे क्यों जाके मक्खन खाएगा? हमारे घर पे 9 लाख गाय हैं, महाराज नंद हैं जो, वो ब्रजेंद्र हैं, ब्रजेंद्र इंद्र, ब्रज इंद्र, वो ब्रज के पूरे ब्रज मंडल के राजा हैं। और कृष्णा का एक और नाम है ब्रज इंद्र नंदन, कि वो नंद बाबा का बेटा, जो पूरे ब्रज के राजा हैं उनका बेटा है। और नंद महाराज के पास 9 लाख गाय हैं, और 9 लाख गांव में बहुत सारी ऐसी श्रेष्ठ गाय हैं जिनका मक्खन, जिनका दूध निकाला जाता है, उनको सर्वश्रेष्ठ घास खिलाया जाता है, फिर वो घास खिला के उनका दूध निकाला जाता है, उस दूध से दही बनाया जाता है, फिर उस दही से मक्खन बनाया जाता है। तो यशोदा मैया सोच रही है हमारे घर पर मक्खन की कमी है क्या, हमारे घर पे दूध की कमी है क्या, जो कन्हैया दूसरों के घर पर जाकर मक्खन खाएगा। पर जब इस प्रकार कभी कभी गोपियां शिकायत लेकर आती हैं, तो मैया यशोदा उनको बोलती है कि अच्छा, अगर कन्हैया तुम्हारे घर पर जा रहा है तो मैं आगे से उसको घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। और कई बार गोपियां कहती हैं कि हमारे घर पे हम बहुत अंधेरे कमरे में मक्खन को टांग देते हैं, फिर भी तुम्हारा कन्हैया उस मक्खन को ढूंढ लेता है, क्योंकि इसके शरीर पर इतने इतने आभूषण पहने हुए हैं कि उनकी जगमगाहट जो हो रही है, उनकी जो चमक है आभूषणों की, उसकी चमक से पूरा कमरा प्रकाशमय हो जाता है, और उसके प्रकाश में वो फिर भी मक्खन को ढूंढ लेता है। तो मैया यशोदा कहती है अच्छा, आगे से मैं कृष्णा को ये सब आभूषण नहीं पहनाऊंगी, फिर तुम लोग संतुष्ट हो। तो गोपियां कहती हैं अरे नहीं, कृष्णा इतना सुंदर लग रहा है ये सब आभूषण पहन के, उसके आभूषण मत छीनिए, उनके आभूषण मत निकाल लिए। तो फिर मैया यशोदा कहती है अच्छा, आगे से मैं कृष्ण को घर के बाहर ही नहीं जाने दूंगी। तो कई बार मैया यशोदा कृष्णा को घर में बिठा कर रखती है कि आगे से तुम्हें कभी घर के बाहर नहीं जाना। और कृष्णा फिर जब कभी कई दिनों के लिए घर के बाहर नहीं जाते, उनकी कुछ शिकायत, ये प्रैंक जो होते हैं, शरारतें होती हैं, वो कुछ दिनों के लिए नहीं होती, तो फिर सब गोपियां इंतजार करती हैं कि कृष्णा क्यों नहीं आ रहे, आज हमारे घर पे कृष्णा क्यों नहीं आए। वो मक्खन बनाती हैं उन और कृष्णा का इंतजार करती हैं कि कृष्णा आएंगे हमारे घर पे मक्खन खाएंगे। तो एक बार मैया यशोदा ने सोचा कि अगर कन्हैया दूसरों के घर पर जाकर मक्खन खा रहा है तो उसका कारण क्या है, हमारे घर पे इतना मक्खन है और कृष्ण दूसरों के घर पर जाकर मक्खन क्यों खाएगा। तो ऐसा सोचकर एक बार मैया यशोदा के मन में भाव आया कि शायद जो हमारे घर पे मक्खन बन रहा है वो कृष्णा को उसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा, कि हमारे घर पे तो सब काम मक्खन बनाना, दही बनाना, ये सब काम नौकरानियां करती हैं, क्योंकि यशोदा मैया तो रानी है, वो पूरे ब्रज मंडल की रानी है, तो उनके घर पे बहुत सारे दास दासियां हैं। तो उनको लगा हमारे घर पे सब काम दास दासियां कर रहे हैं, और शायद उनके काम करने में वो भाव नहीं है, उनके बनाए हुए मक्खन में वो स्वाद नहीं है, इसलिए कृष्णा दूसरी गोपियों के घर पर जाकर मक्खन खाते हैं, क्योंकि वो दूसरी गोपियां तो अपने हाथों से मक्खन निकालती हैं, अच्छे स्वाद से बनाती होंगी, कृष्णा तो भावग्रही हैं और उनको तो भाव चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहारिकम। तो जो भी अगर कोई पत्र पुष्प जल मुझे भाव सहित अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। तो कृष्णा तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको बहुत ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा भी अगर अर्पण किया जाए पर उसके अंदर भाव हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं चाहिए भगवान को, उनको क्वालिटी चाहिए। अगर थोड़ा भाव हो तो कृष्णा बस भाव के भूखे हैं, अगर उनको प्रेम के साथ भाव के साथ कोई जहर भी खिला दे तो भगवान जहर खाने के लिए भी तैयार हैं। जैसे पूतना की लीला में पूतना आई भगवान को विष पिलाने के लिए, इवन दो वो तो भाव के साथ भी पिलाने नहीं आई, पर फिर भी भगवान ने उस विष को भी ग्रहण किया और पूतना का उद्धार कर दिया। तो भगवान जो है वो भावग्रही हैं, उनको सिर्फ भाव चाहिए, भाव के भूखे हैं। जैसे बोलते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तो भगवान को तो सिर्फ प्रेम चाहिए। दुर्योधन के घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए बहु विधि स्वाद बताई। तो भगवान जब एक बार हस्तिनापुर में गए तो दुर्योधन ने उनको अपने घर में आमंत्रण दिया कि प्रभु आप कि आप हमारे घर पे आके हमारा मेवा जो मैंने अच्छा अच्छा भोग आपके लिए तैयार करवाया वो खाइए आप। तो भगवान ने दुर्योधन के घर के मेवा त्याग दिए कि मेरा तुम्हारे साथ ना तो मैं तुम्हारे खाने का भूखा हूं ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई विशेष मित्रता है, मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूं। अगर कोई मुझे प्रेम के साथ खिलाता है ना कि घमंड के साथ, तो मैं उस किसी का भी प्रेम के साथ दिया हुआ भोजन अर्पण जो अगर कोई करता है उसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान दुर्योधन का घर का मेवा त्याग कर विदुर जी के घर पर गए, जो विदुर जी बहुत ही सिंपल भक्त हैं। तो उस समय विदुर जी अपने घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी विदुरानी। तो जैसे ही भगवान उनके घर पे गए, भगवान को उन्होंने देखा तो उनके अंदर इतना प्रेम का समावेश हुआ कि वो सब अपनी सुध-बुध भूल गई और भगवान को कुछ बोलते हैं कि केले के पत्ते खिला रहे हैं, केले के छिलके, कुछ बोलते हैं साग खिलाया। तो केले को छील कर केले का अंदर का जो फल है उसको फेंक रहे हैं और केले का छिलका भगवान को दे रहे हैं, और भगवान प्रेम से जो छिलका भी अर्पण किया हुआ उस छिलकों को पकड़ कर खा रहे हैं। और जब विदुर जी आए उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, अरे ये तुम क्या कर रही हो, भगवान को केले के छिलके खिला रही हो और तुम अंदर का फल फेंक रही हो। तो विदुरानी जी अपनी सुध-बुध भोगी भगवान के प्रेम में। तो भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। शबरी जी ने झूठे फल चक चक कर अपने फल खिलाए उस भाव से कि मैं भगवान देखना चाहती हूँ कौन सा फल मीठा है वो भगवान को अर्पण करूं। तो अपने मुंह से चक चक कर फल भगवान को खिला रही थी और भगवान वो भी प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे थे और बता रहे थे कि ये फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इतना स्वाद तो मुझे माता कौशल्या के बनाए हुए खाने में भी कभी नहीं आया। तो भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और यशोदा मैया भी सोच रही है कि शायद हमारे घर पे जो मक्खन बनता है कृष्ण को उसका स्वाद पसंद नहीं आता, इसलिए वो दूसरों के घर पर जाकर मक्खन चुरा कर खाते हैं। तो एक दिन मैया यशोदा ने सोचा कि आज मैं अपने कन्हैया के लिए खुद से मक्खन तैयार करूंगी। तो उन्होंने तो पर्टिकुलर जब ये लीला हुई तो वो दिवाली के दिन लीला हुई। तो आचार्य बताते हैं कि वो पर्टिकुलर दिवाली का दिन था, माता यशोदा ने सब नौकर नौकरानियों को छुट्टी दिया, सब लोग छुट्टी पर थे दिवाली को। तो मैया यशोदा सुबह सुबह उठकर तैयार हुई, स्नान किया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, रेशमी साड़ी पहनी और भगवान के लिए मक्खन बनाने के लिए बैठ गई। और भगवान के लिए मक्खन कैसे बनाया जा रहा है, तो उसके लिए बोलते कि नंद बाबा के पास जो 9 लाख गैया हैं उसमें 100 गायें ऐसी हैं पद्म गंधा गाय, जो बेस्ट मतलब सबसे श्रेष्ठ गाय है, तो उन गैयों को सबसे श्रेष्ठ घास खिलाया जाता है, फिर उन गैयों का दूध निकाल कर उससे दही जमाया जाता है और फिर वो भगवान के लिए तैयार किया जा रहा है मक्खन। तो मैया यशोदा ने सुबह सुबह उठकर स्नान किया, अच्छे वस्त्र पहने, रेशमी साड़ी पहनी और फिर मैया अपना घर पे मक्खन बनाने के लिए बैठ गई। और उस पे भी अभी ये बहुत अच्छा सिद्धांत भागवतम में, हर लीला में बहुत से सिद्धांत सीखने को हैं। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, भगवान के लिए हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने घर पे कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सुबह उठकर स्नान करके अच्छे फ्रेश कपड़े पहनकर फिर रसोई घर में जाकर काम शुरू करना चाहिए। हम लोगों के साथ क्या होता है, सुबह उठते हैं कुछ लोग तो ऐसे ही नाइट गाउन में, मुंह हाथ सिर्फ आंखों में पानी डाला, मुंह धोया और नाइट गाउन में ऐसे ही किचन में घुस गए और काम करना शुरू कर दिया। भगवान के लिए भी खाना बना रहे, भोग बना रहे, तो ऐसे ही नाइट गाउन में जो कपड़े स्वच्छ भी नहीं है, अभी खुद को भी स्वच्छ नहीं किया, स्नान नहीं किया, तो ऐसे ही काम शुरू कर देते हैं। तो मैया यशोदा यहाँ पर सिखा रही हैं कि स्नान करके फ्रेश कपड़े धारण करके फिर भगवान के लिए रसोई घर पे जाकर खाना बनाना शुरू किया। और यशोदा, यशोदा का मतलब क्या है, मीनिंग मदर यशोदा को जो नाम है यशोदा, इसमें दो अक्षर आते हैं यश और दा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, ये दूसरों को मान सम्मान प्रदान करे वो है यशोदा। दा मतलब देना और यश मतलब मान सम्मान। तो जो सबको मान सम्मान देते हैं, सबको यश प्रदान करती हैं, भगवान उनके घर पे पुत्र बनकर प्रकट होते हैं। माता यशोदा के घर पे भगवान स्वयं आए पुत्र बनकर, मैया यशोदा जब मक्खन बनाने के लिए बैठी हैं, तो दूसरा और एक और सिद्धांत आ रहा है कि आलस्य का त्याग करके भगवान के लिए काम करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए आलस का त्याग करके। तो सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मैया यशोदा उठकर स्नान करके भगवान के लिए रसोई बना रही हैं, और जब वो रसोई बना रही हैं तो उन्होंने जो पिछले दिन पे पूरा दही बनाकर रखा है एक बड़े मटके में, उस मटके को लिया, उसके अंदर मधानी को डाला और दोनों हाथों से मधानी को खिला रही हैं, और साथ में माता यशोदा भगवान की जो लीला है, कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रही हैं, मक्खन का चरण करते हुए, उसको क्या बोलते हैं, चर्निंग द बटर, शी इज रिमेम्बरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। यानी यानी यह गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानी अघयतः। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब माता यशोदा मक्खन निकाल रही है दही में से, तो मक्खन को निकालते हुए मधनी को हिलाते हुए भगवान के अलग अलग चरित्र लीलाओं का गुण स्मरण कर रही है। यानी यानी यह गीतानी तद बाल चरितानी च। और माता यशोदा जैसे ही भगवान की लीलाओं को गा रही हैं, साथ में मधनी चल रही है और उनके हाथ में जो चूड़ियां पहनी हुई हैं वो चूड़ियां छन 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 कर रही हैं, जैसे कि उसकी ध्वनि ऐसे आ रही है जैसे करताल बज रही हो, और जो मधानी की घर घर हो रही है वो ऐसे बज रहा है जैसे मृदंगा बज रहा हो। तो करताल बज रही है, मृदंगा बज रहा है, और माता यशोदा भगवान की लीलाओं का गुण कीर्तन कर रही है। तो कीर्तन चल रहा है और भगवान के लिए काम हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है। तो यहाँ पर क्या सिद्धांत आ रहा है कि जब भी हम अपनी कुछ भी कार्य में लगे हुए हैं, जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं अपना, चाहे घर का काम कर रहे हैं चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। अगर अपना काम करते हुए भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कर्म का बंधन नहीं होता, उस कर्म बंधन से छूट जाते हैं। नहीं तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसका काम का रिएक्शन होगा, उसका बंधन आएगा। पर अगर भगवान का स्मरण कर रहे हैं कोई भी काम करते हुए, तो उसके क्या फायदे हो रहे हैं, एक तो कर्म का बंधन नहीं होगा, उसका काम का रिएक्शन नहीं आएगा, और जो पुराना कर्म का बंधन है वो भी छूट जाएगा, और तीसरा जो फायदा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम के बिना किसी मुश्किल से जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी काम करें तो उसका बंधन होता है, अदरवाइज अगर हम खाना भी बना रहे हैं, चल भी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन मिलता है। हमारे जीवन में अलग अलग काम का इतना बंधन है, अगर किसी के पास कोई योग्यता भी है पर काम के बंधन, जो पुराना रिएक्शन है उसकी वजह से उसको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। जैसे जो गाय है, गाय को अगर एक रस्सी के साथ, एक वृक्ष के साथ बांध दिया जाए, तो गाय सिर्फ उतना ही चल सकती है जितनी की उस रस्सी की लंबाई हो। गाय में चलने की क्षमता है, अगर गाय को खुला छोड़ दिया जाए तो गाय मीलों मील चल सकती है, पर क्योंकि उसको रस्सी का बंधन लगा हुआ है इसलिए गाय सिर्फ उतने ही सर्कल में सीमित है जितना की उस रस्सी की लंबाई हो। उसी प्रकार मनुष्य के ऊपर कर्म का इतना बंधन है कि उसके अंदर योग्यता होते हुए भी उसको सिर्फ उतना ही कर्मफल मिलता है जितना कि उसके कर्मों के हिसाब से निश्चित किया गया है। पर अगर कोई भी काम करते हुए भगवान का नाम गुण लीला स्मरण किया जाए, तो पुराने कर्म का बंधन भी छूट जाता है और जो इस समय काम किया जा रहा है उसका बंधन भी नहीं लगता। तो मदर यशोदा, मैया यशोदा भगवान के लिए मक्खन बना रही हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, और मक्खन निकालते हुए मधानी को चलाते हुए खूब परिश्रम हो रहा है, मैया यशोदा के माथे पर पसीना आ रहा है, पसीने की बूंदें आ रही हैं। मैया यशोदा का जो श्रृंगार है उसका वर्णन किया गया है, सुखदेव गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं भागवतम में, कहते हैं मदर यशोदा, मैया यशोदा ने बड़े ही सुंदर मालती के फूल अपने सर पे पहने हुए हैं, सुंदर रेशमी साड़ी पहनी हुई है, सुंदर हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। तो जो ये मालती के फूल उनके बालों में लगे हुए हैं, और जब माता यशोदा इतना परिश्रम कर रही हैं, तो वो फूल एक एक करके उनके बालों में से गिर निकलकर नीचे गिर रहे हैं। और आध्यात्मिक जगत में एक्चुअली जो हर चीज है वो चेतन वस्तु है। भौतिक जगत में तो ये सब चीजों को हम बोलते हैं कि जड़ वस्तु है, जो मटकी हो गई, दूध हो गया, फूल हो गए, उनको बोलते हैं जड़ वस्तु है। पर आध्यात्मिक जगत में सब चेतन है, कि ये सब भी सोचते हैं, उन सब की भी फीलिंग है। तो ये जो मालती के फूल मैया यशोदा के सर पर लगे हुए हैं, वो फूल भी सोच रहे हैं कि हम इतने अच्छे भक्त के सर पर चढ़कर बैठे हैं, अच्छा है कि हम उस भक्त के चरणों में गिर जाएं, उस भक्त के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें। तो मैया यशोदा इतनी अच्छी भक्त हैं, जो भगवान का चिंतन कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं, भगवान के लिए इतना परिश्रम कर रही हैं, तो उनके सर पर चढ़कर बैठने के बजाय हमें उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। और ये सब मालती के फूल भी निकल निकल कर नीचे आके चरणों में आकर गिर रहे हैं। तो उस समय जब माता यशोदा मक्खन निकाल रही थी, तो बाल गोपाल कृष्ण अंदर अपने बिस्तर पर कमरे में सो रहे थे। तो कृष्णा की नींद खुली, वो उठकर मैया यशोदा के पास आए, देखा मैया यशोदा इतना परिश्रम कर रही है, मधानी चला रही है, मक्खन निकाल रही है। तो एक हाथ से आकर कृष्णा ने मधानी को पकड़ा, और जैसे ही मधानी को पकड़ा, यहां पर कृष्णा क्या दिखा रहे हैं कि तुम इतना परिश्रम क्यों कर रही हो? जितने इतने सब योगी हैं, मुनि हैं, वो सब शास्त्रों का मंथन करते हैं, उसमें से मुझे समझने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। तो जितने भी ये सब योगी मुनि हैं, शास्त्रों का मंथन करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे सामने फल के रूप में आकर खड़ा हूं, और तुम इतना सब परिश्रम क्यों कर रही हो, ये सब मंथन क्यों कर रही हो? इस फल को उठाओ और अपनी गोद में बिठा लो। तो मैं यहाँ पर स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे उठाकर अपनी गोद में बिठाओ। तो कृष्णा ने एक हाथ से मधानी को पकड़ा, उसकी चरणी को बंद किया, दूसरा हाथ उन्होंने माता यशोदा के कंधे पर रखा, और कुछ ही क्षण में वो माता यशोदा की गोद में थे। तो माता यशोदा ने सोचा कि कृष्णा दूध पीना चाहते हैं, तो माता यशोदा ने भी कृष्णा को प्रेम से अपनी गोद में लिया, और वो कृष्ण को दूध पिलाने लगी। और उस समय जब भगवान को मैया यशोदा दूध पिला रही हैं, अपना स्तनपान करा रही हैं, तो अंदर रसोई में माता यशोदा ने एक दूध का बर्तन रखा था उबालने के लिए, दूध को उबालने के लिए, कि ये दूध उबलेगा, फिर उसको ठंडा करके दही बनाया जाएगा, और उससे फिर कृष्ण के लिए मक्खन निकाला जाएगा। तो जब माता यशोदा कृष्ण को दूध पिलाने लगी, तो रसोई में जो ये दूध गर्म करने के लिए रखा गया है, वो दूध भी अब सोच रहा है। जैसे मैंने पहले बोला, आध्यात्मिक जगत में सब चीज चेतन है, दूध भी सोच रहा है, दूध की भी फीलिंग्स एंड थिंकिंग है। तो दूध सोच रहा है कि मैं यहाँ पर अपने आप को जला रहा हूँ, अपना इतना तप कर रहा हूँ कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, उनके कुछ काम आ सकूं, मैं यहाँ पर अपने आप को इतना तपा रहा हूं, पर भगवान तो माता यशोदा के स्तनपान करते हुए पूरी तरह से संतुष्ट हैं। देखिए, यहाँ पर अभी भगवान और मैया यशोदा दोनों आनंद ले रहे हैं, भगवान स्तनपान कर रहे हैं वो आनंद ले रहे हैं, मैया यशोदा भी खूब आनंद ले रही हैं, तो दोनों आनंद ले रहे हैं, पर अंदर तीसरा एक जल रहा है। तो दूध को जलन हो रही है कि मैं इतना तप कर रहा हूँ, इतना अपने आप को तपा रहा हूँ, पर मेरा जीने का फायदा क्या है? मैया यशोदा कृष्ण को असीम दूध पिला सकती हैं, तो मेरी जरूरत क्या है? इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को इस अग्नि में डालकर अपना जीवन समर्पण कर दूं, अपना जीवन खत्म कर दूं। तो दूध ऊपर को उबलने लगा और बर्तन में से बाहर छलक कर अग्नि में कूदने लगा। तो जब मैया यशोदा ने वो कुछ आवाज सुनी कि दूध बाहर छलक रहा है, अग्नि में जा रहा है, तो मैया यशोदा ने सोचा कि मुझे उस दूध को बचाना चाहिए, क्योंकि वो दूध भी भगवान के काम आएगा, भगवान की सेवा के लिए उसको यूज करना है। तो उस समय उन्होंने कृष्णा को अपनी गोद में से उठाकर बाहर रखा, और उस दूध को बचाने के लिए अंदर चली गई। उस दूध को आग पर से हटाने के लिए। और यहाँ पर भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैया यशोदा मुझे आनंद न देकर उस 50 रुपए लीटर दूध को बचाने के लिए चली गई, उस दूध की वैल्यू मुझसे ज्यादा है। तो उस समय कृष्ण ने अपना क्रोध व्यक्त किया। भगवान भी अपनी लीला कर रहे हैं, उनको क्रोध ऐसे नहीं आ रहा, पर भगवान अपनी लीला व्यक्त कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे दूध ना पिलाकर, मुझे संतुष्ट ना करके वो उस दूध को बचाने के लिए चली गई। तो उन्होंने क्रोध में आकर देखा कि अभी मुझे कुछ और लीला करनी चाहिए। वहां पर पास में पड़ा पत्थर उठाया और उस पत्थर से जिस मटके में मैया यशोदा मक्खन बना रही थी, उस मटके को नीचे से फोड़ डाला। तो कृष्ण ने उस मटके को ऊपर से नहीं तोड़ा, मटके को ऊपर पत्थर मारकर ऊपर से नहीं तोड़ा, बिल्कुल नीचे से तोड़ा। अगर ऊपर से तोड़ते तो शायद थोड़ा बहुत मक्खन बच जाता, पर अभी बिल्कुल नीचे से तोड़ा तो सारा का सारा जो दही मक्खन का मिश्र था वो सब बाहर बहने लगा। तो कृष्ण ने सोचा अभी ये तो कर दिया, अभी मैया यशोदा वापस आएगी तो मुझ पर खूब गुस्सा करेगी। तो वहां से भागने लगे। तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊं, अभी कहाँ छुपूं। तो जैसे कृष्ण वहां पर भाग रहे हैं तो उनके जो पैरों के निशान बन रहे हैं वहां पर, पूरा जो मक्खन दही का मिक्सचर बाहर निकल रहा है उस पॉट में से, तो भगवान के चरण उसमें पड़ रहे हैं और सबके चिन्ह पद चिन्ह वहां पर बन रहे हैं। और छोटे छोटे कदमों से चलते हुए भगवान अंदर चले गए। अभी देखिए जो भगवान जो वामन अवतार बनाकर आए, जिन्होंने अपने दो पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, अभी वो अपने छोटे छोटे चरणों से भागते हुए इधर उधर भागते हुए जाकर छुपने का स्थान खोज रहे हैं। तो ये भगवान की अद्भुत लीला। तो कन्हैया उस टाइम पे छुप अंदर जाकर एक अंदर वाले रूम में चले गए, अंदर वाले कमरे में गए। तो वहां पर जाकर क्या किया कि मैया यशोदा ने जो पहले दिन का मक्खन निकाला हुआ था उसको छत से टांगा हुआ था छज्जे से। तो कृष्णा ने देखा वहां पर एक मूसल पड़ा हुआ है, ओखली। तो ओखली को उल्टा करके उसके ऊपर खड़े हो गए और मक्खन निकाल निकाल कर खाने लगे। और वो मक्खन खुद भी खा रहे हैं और सब बंदरों को भी खिला रहे हैं। सब बंदर, इतने बंदर वहां पर इकट्ठे हो गए, खुद भी मक्खन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। कभी ये प्रश्न आता है किसी के मन में कि वृंदावन में इतने सब बंदर आए कहाँ से? एक्चुअली ये भगवान की पिछली लीला से लिंक है, जो भगवान राम के समय में, जब भगवान राम ने पूरे वानर सेना का सहायता लेकर रावण का संहार किया, उस समय भगवान राम ने सोचा मेरे पास कुछ है नहीं इन सब वानर सेना का भरण पोषण करने के लिए, इनको अच्छा सा कुछ खिलाने के लिए। ये सब कंदमूल खाकर जो भी उनको मिल रहा है उससे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पर मैं इनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने बोला अभी मैं अपना उन सब बंदरों को, उन सब वानरों को खूब अच्छे से खिलाऊंगा। तो ये सब वानर उस समय के वानर सेना के वानर हैं, जो बंदर हैं, जो इस समय पर कृष्ण लीला में भगवान जिनको खूब खिला पिला रहे हैं, खूब मक्खन खिलाते हैं, खूब दही खिलाते हैं। तो उस समय भगवान जाकर अंदर कमरे में छुप गए, खुद भी मक्खन निकाल कर खा रहे हैं, बंदरों को खिला रहे हैं। पर इधर मैया यशोदा दूध को स्टोव से निकाल कर, चूल्हे से निकाल कर वापस आई और उन्होंने देखा कि ये पूरा मटका टूटा हुआ है, सारा दही मक्खन बाहर बह रहा है। तो मैया यशोदा को बड़ा क्रोध आया कि ये सब कन्हैया की ही शरारत है, तो आज तो उसको सबक सिखाकर रहूंगी, आज तो उसको खूब सजा देकर रहूंगी। और मैया यशोदा ने देखा अभी उसको कहाँ पर खोजूं, कहाँ पर ढूंढूं। तो मैया यशोदा लाइक अ डिटेक्टिव, जासूस की तरह मैया यशोदा ने पद चिन्हों को देखा कि ये सब पद चिन्ह इधर जा रहे हैं। तो पद चिन्हों का पीछा करते करते मैया यशोदा अंदर कमरे में आई। जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची तो देखा उन्होंने कि अंदर से बड़े बंदरों की आवाजें आ रही हैं। तो उन्होंने एक छड़ी उठा ली। अभी ब्रजवासी, अगर आप वृंदावन में जाओ तो ब्रजवासी एक छड़ी अपने साथ रखते हैं। उसका यूज क्या है, उसका पर्पज क्या है कि इतने सब बंदर हैं कि बंदरों को डराने के लिए, कि ताकि वो कोई चीज छीन कर भाग न जाए, तो उनको डराने के लिए एक छड़ी रखते हैं, उनको छड़ी दिखाने के लिए। तो मैया यशोदा ने सब बंदरों को ऐसे डराने के लिए, भगाने के लिए एक छड़ी हाथ में उठा ली। और जैसे ही मैया यशोदा अंदर कमरे में गई, कृष्ण ने देखा मैया यशोदा आ रही है, तो कृष्णा उस ओखल पे से कूदकर भागने लगे। अभी कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही है, कृष्णा छोटा सा बालक खूब तेज गति से भाग सकता है, मैया यशोदा वृद्ध महिला, उनका भागने का जो गति है वह बहुत धीमा है, तो कृष्णा के पीछे पीछे भाग रही है, कृष्णा धीरे धीरे भाग रहा है मैया यशोदा के आगे आगे, सिर्फ एक वाज जो हाथ का अंतर है। भगवान ऐसे ही आंगन में भागते भागते फिर वृंदावन की गलियों में निकल गए, और मैया यशोदा भाग रही है भाग रही है, उनके सब बाल खुल रहे हैं, बालों के ऊपर अभी जो बाकी बचे खुचे फूल लगे हुए हैं वो सब भी नीचे गिर रहे हैं, कि मैया यशोदा इतना परिश्रम कर रही है, हम उनका भार क्यों बढ़ाएं, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को उनके चरणों में गिरा दें। तो कृष्णा बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि मैया यशोदा कितनी दूर है कितनी दूर है, और मैया यशोदा के सिर्फ एक हाथ से फासले पर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। तो ऐसे ही जब भागते भागते भगवान ने देखा कि मैया यशोदा बहुत परिश्रम कर रही हैं, बहुत थक गई हैं, तो भगवान ने सोचा कि अभी मुझे मैया यशोदा की पकड़ में आ जाना चाहिए। तो अगर अदरवाइज देखा जाए भगवान को कौन पकड़ सकता है, किसमें इतना शक्ति है कि भगवान को पकड़ सके। जब मथुरा में काल यवन नाम के राक्षस ने आक्रमण किया अपनी सेना के साथ, तो भगवान काल यवन के आगे आगे भाग रहे हैं और काल यवन पीछे पीछे। अभी काल यवन एक योद्धा है और भगवान उससे एक कदम एक वायु के अंतर पर आगे आगे भाग रहे हैं, एक हाथ के अंतर पर, और कालयवन भगवान को पकड़ नहीं पा रहा है। पर यहाँ पर मैया यशोदा जो कि एक वयोवृद्ध महिला है, उनकी क्या शक्ति है कि वो कृष्ण को तेज गति से भागकर पकड़ सके। पर फिर भी भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके उनकी पकड़ में आ जाते हैं। तो भगवान ने सोचा मैया यशोदा इतना परिश्रम कर रही है मुझे पकड़ने के लिए, तो अभी मुझे उनकी पकड़ में आ जाना चाहिए। तो कृष्ण ने अपनी गति थोड़ा धीमी की, मैया यशोदा ने अपनी गति थोड़ा बढ़ाई और झटके से जाके कृष्ण को पकड़ लिया। तो अभी मैया यशोदा कृष्ण को पकड़ रही हैं, जैसे ही कृष्ण ने देखा मैया यशोदा के एक हाथ में छड़ी है, तो कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भगवान ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे वो डर रहे हैं उस छड़ी को देखकर। पूरे ब्रह्मांड के अधिपति, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जो अलग अलग अवतार लेकर आए, अलग अलग राक्षसों का संहार किया, शुक्र रूप में आए हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह अवतार लेकर आए हिरण्यकशिपु का वध किया, रावण का वध किया, इतने इतने और राक्षसों का वध किया, वही भगवान अब मैया यशोदा के हाथ में एक छोटी सी छड़ी देखकर डर रहे हैं। तो भगवान की ये अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं जो दूसरों को असमंजस में डाल देती हैं, जो दूसरों को बिविल्डर कर देती हैं, और लोगों को लगता है ये सचमुच में भगवान है क्या। तो भगवान अपनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, देख के छड़ी मैया यशोदा के हाथ में थोड़ी छड़ी देखकर रोने लगे। तो मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कि कन्हैया मेरे हाथ में ये छड़ी को देखकर डर रहा है, तो मैया यशोदा ने इमीडिएटली उस छड़ी को फेंक दिया। तो यहां पर भी सिद्धांत क्या आ रहा है कि मैया यशोदा ने छड़ी उठाया था डराने के लिए, ना कि कृष्ण को पीटने के लिए। तो प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में और परपट में लिखते हैं कि बच्चों को अगर कोई गलती करे तो उनको सुधारना चाहिए, तो उनको डराना चाहिए, पर कभी भी उनको पीटना नहीं चाहिए, फिजिकली कभी भी उनको हार्म नहीं करना चाहिए। यू कैन शो द आई, यू कैन शो द स्टिक, बट डोंट यूज द स्टिक। तो मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कृष्ण डर रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली उसी समय अपना छड़ी हाथ से फेंक दिया। तो उस समय इस अद्भुत लीला को देखकर सत्यवत मुनि जी ने ये दामोदर अष्टकम की रचना की, जो भगवान की इस अद्भुत लीला को देख रहे हैं। एक्चुअली ये दामोदर अष्टकम सत्यवत मुनि ने लिखा नहीं है, उन्होंने इसको प्रकट किया है। ये दामोदर अष्टकम, जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है, उसी उसी तरह से दामोदर अष्टकम भी का भी कोई आदि और अंत नहीं है। ये दामोदर अष्टकम भी शुरू से है और इस दामोदर अष्टकम को सत्यवत मुनि ने प्रकट किया। इस दामोदर अष्टम के बारे में एक और कथा भी आती है कि एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे थे सत्यभामा के साथ। स्कंद पुराण में ये कथा आती है। तो भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ द्वारिका में विराजमान थे। तो सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि जो आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने पिछले जन्म में तुमने बहुत ही भक्ति भाव से कार्तिक के महीने में पूरा महीना दीपदान किया और खूब भक्ति भाव से ये दामोदर अष्टकम गाया। उसके फल स्वरूप इस जन्म में मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हुआ हूं। ये दामोदर अष्टकम गाने की महिमा, दामोदर अष्टकम की महिमा, और दामोदर अष्टकम का कोई आरंभ नहीं है, कोई आदि नहीं है। दामोदर अष्टकम भी अनंत है। तो उस समय सत्यव्रत मुनि ने भगवान की इस अद्भुत रोचक लीला को देखकर इस दामोदर अष्टकम को गाया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्रजमाना यशोदाभियोलुकलाघवमानं परम हृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। तो सत्यवती मुनि क्या बता रहे हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो पहले ही वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैं किसी साधारण बालक के कुछ क्रियाओं के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं किसके बारे में बता रहा हूं, मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूं। नमामीश्वरम, कौन भगवान, सच्चिदानंद रूपम, जिनका शरीर सच्चित आनंद है। तो मैं उस भगवान, परम भगवान के बारे में, उनकी लीला के बारे में बता रहा हूं, उनको नमस्कार कर रहा हूं। और भगवान का लीला क्या चल रहा है, लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, भगवान के कानों में सुंदर सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। और जो गोपी यशोदा के डर से, क्योंकि यशोदा उनके पीछे छड़ी लेकर उनको पकड़ने के लिए भाग रही थी, तो उनसे डर कर वो भाग रहे हैं और भागते हुए उनके जो कुंडल हैं, जो कानों में पहने हुए कुंडल हैं, वो इधर उधर झूल रहे हैं, इधर उधर हिल रहे हैं। तो उस भगवान को, जो यशोदा के डर से इधर उधर भाग रहे हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं रिदंतम करम भोजयुग्मेन सातंकनेत्रम मुहुश्वासकं पात्रीरेखांककंठम स्थितग्रेव दामोदरम भक्तिबाधम। तो वो भगवान जो माता यशोदा के डर से भाग रहे हैं, माता यशोदा ने उनको तेज गति से भागकर पकड़ लिया है, और उनके हाथ में छड़ी को देखकर वो भगवान रो रहे हैं, रुदंतम, और अपनी आंखों को रोते हुए अपनी आंखों को मसल रहे हैं। और उनकी आंखों को मसलने से जो उनकी आंखों में काजल लगा हुआ है वो पूरे चेहरे पर फैल रहा है। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मं रिदंतम करम भोजयुग्मेन सातंकनेत्रम। उनके रोने से उनको जोर जोर से सांस चढ़ रहा है। उनका जो तीन रेखाएं हैं उनके कंठ पे, तीन रेखाएं हैं, जोर जोर से उनका कंठ हिल रहा है। ऐसे भगवान दामोदर को, जो भक्ति के द्वारा पकड़े जा सकते हैं, भक्ति के द्वारा बंधन में आ जाते हैं, उस भगवान दामोदर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान क्या लीला कर रहे हैं, माता यशोदा के डर से रो रहे हैं, रुदंतम, और अपनी आंखों को मसल रहे हैं, जोर जोर से श्वास हो रहा है। जैसे होता है छोटा बच्चा, अगर छोटा बच्चा डर कर रोने लगे तो जोर जोर से रोते हुए उसका सांस चढ़ने लगता है, खूब सांस फूलने लगता है। तो भगवान एक साधारण बालक की तरह इतनी अद्भुत लीला कर रहे हैं। और सत्यवत मुनि उस लीला को अपने दामोदर अष्टकम में प्रकट कर रहे हैं। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमाजान्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्येषु भक्तेर्जिता त्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। तो भगवान की ऐसी बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाओं के कारण वो पूरे गोकुल वासियों को अपने आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं। अभी किसी को लगेगा कि अच्छा भगवान वो तो रो रहे हैं, तो पर यहां पर क्या बताया, वो बाहर से रो रहे हैं पर अंदर से उनको खूब आनंद आ रहा है। वो अपने भक्तों के साथ इतनी आनंद में लीला कर रहे हैं कि पूरे खुद भी आनंद में डूब रहे हैं और पूरे ब्रजवासियों को, पूरे गोकुल के सब निवासियों को उस आनंद कुंड में डूबो रहे हैं। और वो अपने ऐश्वर्य के द्वारा अपने ज्ञानी भक्तों को ये बता रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जा सकता हूं। अगर कोई भगवान की ऐश्वर्य पूर्ण भक्ति करता है या ऐश्वर्य पूर्ण उनकी पूजा करता है, उससे भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो प्रेम के द्वारा, भगवान भक्तों के प्रेम के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भगवान दामोदर को मैं शत शत नमन करता हूं। तो भगवान खूब आनंद लीलाएं कर रहे हैं, बाहर से रो रहे हैं पर अंदर से उनको खूब आनंद आ रहा है। और सत्यवती मुनि कह रहे हैं जब उन्होंने ये सब प्रार्थना की तो जैसे भगवान मानो उनको पूछ रहे हो, अच्छा वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो कुछ, क्या चाहिए। तो सत्यवत मुनि कहते हैं वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा नाचान्यम व्रणे हम वरेषादपीहा इदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वेरासं के मन्ये। तो सत्यवत मुनि कह रहे हैं हे भगवान, आप सब प्रकार के वर दे सकते हैं, सब प्रकार के वर देने में समक्ष हैं, पर ना तो मुझे मोक्ष की कामना है, ना ही मोक्ष का जो सबसे सर्वोत्तम स्वरूप श्री बैकुंठ धाम है, ना ही मुझे उसकी इच्छा है, ना ही मैं नौ प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले अन्य किसी वरदान की कामना करता हूँ। मेरी तो बस सिर्फ आपसे एक ही प्रार्थना है कि आपका जो ये बाल स्वरूप है वो मेरे हृदय में सर्वथा स्थित रहे, सदा मेरे हृदय में आपकी ये बाल झांकी मेरे हृदय में स्थित रहे, मेरे हृदय में बनी रहे। मुझे और किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है, और किसी वस्तु का मुझे क्या लाभ। इदं ते वपुरनाथ, तो इशारा करके बता रहे हैं भगवान जो आपका ये वाला जो बाल स्वरूप है वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरासम के मन ने, ये आपका बाल स्वरूप हमेशा मेरे हृदय में बना रहे, मुझे और किसी चीज की कोई कामना नहीं है। तो जो भक्त है उसका भाव ये रहता है कि मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान की अगर भक्ति की है तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, मैं भगवान को कभी भूल ना जाऊं। जैसे एक बहुत अच्छा और भगवान की लीला आती है भागवतम में इसके बाद, कि एक बार एक फल बेचने वाली महिला वृंदावन में घूम रही थी अपना फल बेचते हुए, तो घूमते घूमते वो नंद बाबा के महल में आई कि कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। और जैसे ही कृष्ण ने उस फल बेचने वाले की आवाज सुनी तो वो उसके पास आए कि मैया मुझे कुछ फल दे दो। तो वो फल बेचने वाली औरत ने बोला कि लल्ला तुम्हें, तुम्हारे घर पे कोई बड़े हैं क्या, तुम्हारे माँ बाप हैं क्या, उनको बुलाओ तो वो फल के बदले में मुझे कुछ देंगे। तो उस समय पे सिस्टम क्या होता था, बार्टर सिस्टम, कि एक चीज कोई एक चीज अपनी बेचता है और उसके बदले में कुछ और लेता है। तो जैसे वो फल बेचते हैं तो उसके बदले में कुछ अन्न, कुछ चावल। तो उन्होंने कृष्णा को बोला कि तुम्हारे घर पे कुछ है तो क्या लेके आ सकते हो। तो अभी कृष्णा अंदर गए, उनके छोटे छोटे हाथ, तो उन्होंने अपने हाथों में कुछ अन्न के दाने लिए, कुछ चावल के दाने लिए। और जैसे ही वो बाहर आ रहे हैं, छोटे छोटे हाथों से वो सब चावल के दाने बाहर गिर रहे हैं। जब तक वो उस फल बेचने वाली के पास आए तो सब दाने गिर चुके थे, दो चार दाने उनके हाथ में बचे थे। तो उन्होंने बोला मैया ये है मेरे पास, तुम मुझे कुछ फल दे सकती हो। तो जो फल बेचने वाली थी वो भगवान के बाल स्वरूप से उनके सुंदरता को देखकर इतना आकर्षित हुई कि उन्होंने बोला कि तुम सब कुछ ले लो, तुम्हें जो चाहिए तुम सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो उन्होंने कृष्ण के हाथ में सब फल देने शुरू कर दिए, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, सब फल भगवान को अर्पण करती जा रही है। और कृष्णा ने सब फल लिए, उनका पूरा टोकरी ऑलमोस्ट खाली हो गया, तो भगवान फल लेकर अंदर चले गए। और उस समय वो फल वाली अपनी खाली टोकरी को देख रही थी, तो उसने सोचा कि पूरा जो पूरे दिन में फल बेचने थे वो तो टोकरी अभी एक ही बार में खाली हो गई, तो अभी मैं वापस अपने घर जाती हूँ। तो जैसे ही वो घर जाने के लिए लगी, उसने टोकरी को सर पे रखा उठाकर और अपने घर की ओर वापस चल दी। और घर जाने के लिए जो वृंदावन यमुना के किनारे पर आई, तो वहां पर आकर जब उसने टोकरी को नीचे उतारा तो क्या देखा, पूरी टोकरी में हीरे जवाहरात मोती भरे हुए हैं। और जैसे ही उसने वो देखा कि जो दो चार अन्न के दाने थे उसके बदले में ये सब टोकरी पूरी हीरे जवाहरात मोतियों से भर गई है, तो उसको देखकर खुशी नहीं हुई बल्कि उसको दुख हुआ। अगर कोई हमारे जैसा होता तो नाचने लगता खुशी में कि अरे वाह, भगवान ने मुझे मेरी भक्ति का फल दे दिया, मैंने थोड़ी सी भक्ति की थी उसके बदले में खूब धन संपत्ति दे दी, तो हमारा जैसा कोई होता तो खूब नाचने लगता। पर उस औरत का क्या था, वो रोने लगी कि हे भगवान, आपने मेरी भक्ति का, मेरे प्रेम का क्या फल दिया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मैंने जो आपको फल दिए थे, जो मैंने आपकी थोड़ी भक्ति की है उसके प्रति मेरी इच्छा ये नहीं थी कि आप मुझे बदले में कुछ दें, बदले में कुछ धन दें। हम लोगों के साथ जनरली क्या होता है, भगवान लोग थोड़ी भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ थोड़ी सेवा करते हैं, तो उसके बदले में उनको धन संपत्ति चाहिए, सुख संपत्ति, घर आवे, दुख कष्ट मिटे तन का। तो थोड़ी सी भक्ति करने के बदले में, थोड़ी सी पूजा अर्चना करने के बदले में भगवान से संपत्ति चाहिए। एक्चुअली वो बहुत ही निम्न स्तर की भक्ति है, वो बहुत ही घाटे का सौदा है। अगर भगवान की भक्ति करने के बदले में थोड़ा धन संपत्ति मांग रहे हैं तो बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि भगवान अपने आप को हमें दे सकते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रेम में इतना बंध जाते हैं कि वो अपने आप को समर्पण कर देते हैं। पर अगर कोई भगवान की भक्ति करने के बदले में थोड़ा कुछ भौतिक जगत की वस्तु मांग रहा है, तो भगवान बोलते हैं अच्छा चलो, छुटकारा हुआ कि मैं बंधने से बच गया, मैं इस बंधन से बच गया कि उसने थोड़ा सा इस भौतिक जगत का सुख सुविधा लेकर एक तरह से बिजनेस डील कर लिया और भगवान का उससे छुटकारा हो गया। और ये स्त्री जो फल बेचने वाली थी उसके हृदय में इतना दुख हुआ कि भगवान ने मुझे ये सब धन संपत्ति देकर अपने प्रेम से विहीन कर दिया। तो उसने बोला कि मुझे ये सब धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम के बदले में सिर्फ प्रेम चाहिए। तो वो सब हीरे जवाहरात मोती थे यमुना जी में डाल दिए। तो वही सिद्धांत यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे किसी वर की कोई कामना नहीं है, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए, ना ही मुझे सर्वोत्तम जो वैकुंठ है, ना ही मुझे वैकुंठ की इच्छा है, ना ही मुझे भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी और वरदान की कामना है। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि आपका जो बाल स्वरूप की जो झांकी है वो हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे, मेरा आपके प्रति हमेशा भक्ति भाव बना रहे, और कोई अन्यथा वस्तु नहीं चाहिए। तो उस समय जब मैया यशोदा ने कृष्ण को पकड़ा, मैया यशोदा ने सोचा कि अभी कृष्ण को खूब सबक सिखाना चाहिए, इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई हैं, मुझे उसको सजा देनी चाहिए। तो कृष्ण को एक हाथ से पकड़ा और घर के अंदर लेके गई। और माता यशोदा ने सोचा कि अभी मैं तुम्हें रस्से के साथ बांध दूंगी, और ये जो ओखल है इसने भी तुम्हारी शरारतों में तुम्हारी सहायता की है तो इसको भी सजा मिलेगी, तो इस ओखल को और तुम्हें दोनों को आपस में बांध दूंगी। तो उन्होंने रस्सी लिया और कृष्णा को उस ओखल के साथ बांधने लगी। जैसे ही माता यशोदा कृष्णा को ओखल के साथ बांधने की कोशिश कर रही है, जो रस्सी है वो दो उंगल छोटी पड़ रही है। और उस समय तक जब माता यशोदा कृष्णा का पीछा कर रही थी पकड़ने के लिए, सब गोपियां, वृंदावन की सब गोपियां भी ये सब देख रही थी, और वो भी वहां पर आनी इकट्ठा शुरू हो गई कि माता यशोदा आज क्या कर रही है कृष्ण के साथ, तो सब देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। माता यशोदा खूब प्रयत्न कर रही है कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी के साथ, और जितने भी रस्सियां मिलाते जाते हैं फिर भी वो दो उंगल छोटी पड़ती है। उन्होंने बोला सब गोपियों को, सब जाओ अपने अपने घर से रस्सियां लेकर आओ, पूरे वृंदावन में जितनी रस्सियां हैं सब ले आओ। सब रस्सियों को जोड़ा, सबको आपस में बांधा, फिर भी भगवान के कमर के साथ पेट के साथ बांधने की कोशिश किया तो फिर से दो उंगल छोटी। तो माता यशोदा परेशान हो गई कि ये बंद क्यों नहीं रहा है। तो ये जो दो उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है, ये दो उंगल क्या चीज को सिग्निफाई कर रहा है, ये दो फिंगर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आचार्य बताते हैं कि ये दो उंगली, इसमें दो चीजें आती हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा के बिना भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर भगवान की कृपा मिलने के लिए जो दूसरी चीज है वो है भक्त का प्रयास, साधक का प्रयास। तो जो जो दो उंगल हैं वो एक है भक्त का प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो ये दोनों चीजें चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि अरे भगवान की जब कृपा होगी तब मैं भक्ति कर पाऊंगा, तब मेरे ऊपर भगवान की कृपा होगी। ऐसा नहीं है भगवान कभी आकर आपके घर की डोरबेल बजाएंगे, गुप्ता जी शर्मा जी मैं आ गया मेरी भक्ति कर लो। भगवान की भक्ति करने के लिए हमें खुद से अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, साधक का प्रयास। और वो प्रयास क्या है? सुबह उठना, भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की गुण लीलाओं का वर्णन करना, भगवान को भोग लगाना। तो ये साधक का प्रयास है। और जब साधक अपना प्रयास करता है तो भगवान भी अपनी कृपा करते हैं। कृपा का मतलब ही है कृपा, कर और पा। पहले तुम अपना कर्म करो, अपना काम करो, अपना प्रयास करो और फिर भगवान की कृपा प्राप्त करो। तो ये जो दो उंगल हैं वो इस सिद्धांत को बता रही है कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान को अपने हृदय में बांधने के लिए साधक को प्रयास करना पड़ेगा। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को पकड़ नहीं सकते। तो मैया यशोदा खूब प्रयास कर रही है। जब भगवान ने देखा माता यशोदा इतना प्रयास कर रही है, खूब थक गई है, तो फाइनली कृष्ण ने सोचा कि अभी मुझे इस बंधन में आ जाना चाहिए, अभी मुझे माता यशोदा की के बंधन में आ जाना चाहिए। तो कृष्ण ने अपने आप को बंधना स्वीकार किया। और सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं माता यशोदा के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं उस रस्सी को जिससे आपका उधर को बांधा गया है। तो जो जो वर्ड है दामोदर, दामोदर का मतलब है दाम और उदर, उदर मतलब बैली पेट और दाम मतलब रस्सी, जिसके पेट को रस्सी के साथ बांधा गया। तो भगवान की इस लीला से जब माता यशोदा ने भगवान को रस्सी के साथ बांधा तो उनका नाम हुआ दामोदर। सत्यवत मुनि कह रहे हैं मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं जिससे आपका पेट को बांधा गया, जो पूरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का भी स्रोत है, जहां से पूरे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उसको जिस रस्सी से बांधा गया है उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब जब भगवान को रस्सी के साथ बांध दिया तो मैया यशोदा, भागवत में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान को बांधने के बाद माता यशोदा घर के अंदर चली गई अपना घर का काम करने के लिए। और उस समय जब भगवान वहां पर बंधे हुए खड़े थे तो उन्हें घर के आंगन में खड़े हुए दो यमला अर्जुना के वृक्ष दिखाई दिए। और भगवान ने सोचा कि ये जो दो वृक्ष हैं ये मेरे भक्त नारद मुनि से शापित हैं, अभी मुझे इनको इस श्राप के बंधन से मुक्त करना चाहिए। तो कोई सोच सकता है कि भगवान को ये जो जो दो वृक्ष थे आंगन में वो आज ही दिखाई दिए, इतने इतने सालों से, इतने सालों से रह रहे हैं, रोज खेलते हैं, अंदर बाहर जाते हैं, घर के आंगन से होते हुए, तो उनको कभी वो दो वृक्ष दिखाई नहीं दिए, आज उनको ये वृक्ष दिखाई दिए और उनको लगा कि मुझे इन वृक्षों का उद्धार करना चाहिए आज। तो इसके पीछे भी सिद्धांत है। आचार्य कहते हैं कि जब कोई खुद बंधन में होता है, जब किसी के ऊपर खुद के ऊपर दुख आता है तब उसको दूसरों का दुख दिखाई देता है। आज जब कृष्ण खुद यहाँ पर बंधन में फंसे हुए खड़े हैं, थोड़े समय से आधे घंटे से अभी बंधन में हैं, तो उनको ये ध्यान आया कि ये जो वृक्ष हैं हजारों हजारों सालों से इस बंधन में हैं, तो मुझे अभी इनका उद्धार करना चाहिए। नारद मुनि ने उनको श्राप देकर ये वृक्ष बनाया। तो उनका हिस्ट्री क्या था, वो दो जो वृक्ष थे वो पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, और नारद मुनि के द्वारा श्रापित होकर वो वृक्ष बने। और ओखल से बंधने के बाद कृष्ण ने उन दो वृक्षों का उद्धार किया। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने इतना बताया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज ने उसी समय कथा को रोककर प्रश्न किया, हे भगवान, आप मुझे ये कथा थोड़ा विस्तार में बताइए कि जो कुबेर के दो पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव, नारद मुनि ने उनको श्राप क्यों दिया, नारद मुनि को क्रोध क्यों आया और उन्होंने श्राप क्यों दिया। जरूर नल कुबेर ने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया होगा, बहुत गलत काम किया होगा जिसकी वजह से नारद मुनि को उन्हें श्राप देना पड़ा। तो आप मुझे कृपया ये कथा थोड़ा विस्तार में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के दशम अध्याय में नल कुबेर मणिग्रीव की कथा को बता रहे हैं, जो दामोदर लीला का दूसरा पार्ट है, कि भगवान ने बंधने के बाद उन दो यमल अर्जुन वृक्षों का उद्धार कैसे किया। तो बताते हैं कि ये जो दो वृक्ष हैं वो पूर्व जन्म में कुबेर जो धन के देवता हैं, जो देवताओं के खजांची हैं, उनके पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। मणिग्रीव मतलब, ग्रीव मतलब गला, जिसके गले में मणि है, इसलिए उनका नाम था मणिग्रीव। तो ये दो दोनों पुत्र थे, उनको शिवजी ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया। वो लोग कैलाश में शिवजी के समीप्य में रह रहे थे। रुद्रास्य अनुचरण भूत्वा सुदर्पतु धंद आत्मजौ कैलाशोपवने रम्य मंदिक मंदाक्यनियम मदोक्तौ। रुद्रास्य अनुचरो भूत्वा, तो भगवान शिव के अनुचर थे, भगवान शिव ने उनको अपना पीए बनाया, पर्सनल असिस्टेंट। तो यहां पर रुद्र, अब शिव जी को रुद्र क्यों बोला जाता है, रुद्रास्य रुद्र, क्योंकि वो रोते हुए ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुए, इसलिए उनका एक नाम हुआ रुद्र, जो रोते हुए आए। और रुद्र का दूसरा मतलब है रुगानी द्रवति इति रुद्र। रुगानी मतलब रोग, द्रवति मतलब जो हटा देता है, जो दूसरों के रोग को हटा देता है वो है रुद्र। तो शिवजी का जो काम है दूसरों के रोग का निवारण करना, और सबसे बड़ा रोग क्या है, भव रोग। शिवजी के दो ही काम है, एक तो भगवान के नाम का गुण स्मरण करना, चिंतन करना, और दूसरा है भगवान की कथा, भगवान राम की कथा, भागवत कथा बोलना। तो भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा वो सबके सबको इस भव रोग से मुक्त करते हैं। तो भगवान शंकर ने, रुद्र ने उनको अपना अनुचर बनाया, कैलाश में उनको स्थान दिया। पर फिर भी जो ये दो पुत्र थे कुबेर के, एक तो उनको अपनी संपत्ति का घमंड, अगर कोई किसी अमीर का पुत्र है तो जनरली उनको अपने पैसे का घमंड हो जाता है, तो एक तो उनको अपनी संपत्ति का घमंड, दूसरा उनको अच्छी पोजीशन मिलने का घमंड कि हम तो शिवजी के असिस्टेंट हैं, शिवजी के अनुचर हैं। तो जब इन दो चीजों का घमंड हुआ तो वो कैलाश के ऊपर भी उपवनों में मस्ती में घूम रहे थे, मदिरा पान करते हुए खूब मदमस्त होकर घूमते थे। तो यहाँ पर एक बात जो समझनी चाहिए कि जो भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे उनको भौतिक जगत के सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है, पर उससे हृदय में जो कचरा है वो साफ नहीं हो पाता, हृदय की शुद्धता नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, शास्त्रों में इतने इतने प्रमाण हैं, हिरण्यकशिपु, ने हजारों हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की पूजा की, और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। और वरदान लेकर क्या किया, फिर हिरण्यकशिपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ, उल्टा वो एक पूरे विश्व में सबसे बड़ा आतंकवादी बना। रावण, रावण ने भी भगवान शिव की बहुत उपासना की, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, उस यज्ञ में अपने 10-10 सर काटकर उस यज्ञ कुंड में डाल दिए, पर इतनी सब तपस्या करने के बाद, इतनी ऑस्टेरिटी करने के बाद उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। कंस, कंस भी दुर्गा देवी का भक्त था, दुर्गा देवी की खूब उपासना की, पर उतनी उपासना करने के बाद फिर भी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। तो जितने भी लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं उससे उनको भौतिक जगत की कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, कुछ सुख प्राप्त हो सकते हैं, पर उससे जो हृदय है वो शुद्ध नहीं होता। पर दूसरी तरफ अगर कोई भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का की भक्ति करता है, उनका स्मरण करता है, अगर हृदय में अशुद्धता भी है पर भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करने से वो हृदय की अशुद्धता जो है वो दूर हो जाएगी और हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज के केस में, ध्रुव महाराज के हृदय में राज्य पाने की इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता के पिता से बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता के पिता के पिता से बड़ा राज्य चाहिए। तो उनके हृदय में ये इच्छा थी इस भौतिक जगत का लाभ प्राप्त करने की। पर उनको जैसे ही वो वन में जा रहे थे उनको नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने उनको भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए बोला, उनको वृंदावन यमुना किनारे भेजा, और जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की तो हृदय में जितना भी मल था सब चला गया और हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो अगर हमें अपना हृदय शुद्ध करना है, अगर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करना है तो भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो यहां पर भी नल कुबेर मणि ग्रीव, इवन दो भगवान शिव के साथ हैं पर उनको शिवजी से कुछ शिक्षा नहीं ले रहे हैं। वो वहां पर कैलाश में भी बगीचों में घूम रहे हैं मदमस्त होकर, और क्या कर रहे हैं, वो वारुणी मदिरम पीत्वा, वारुणी नाम की मदिरा का पान कर रहे हैं। ये वारुणी मदिरा क्या है, कई बार लोगों को लगता है कि देवता लोग भी हैं जो मदिरा पीते हैं, एक्चुअली देवता लोग मदिरा नहीं पीते, वो सोमरस पीते हैं, और लोगों को लगता है सोमरस मदिरा है, एक्चुअली सोमरस जो है वो फलों का रस है, फलों का एसेंस है, शुद्ध जूस फलों का एक तरह से अगर बोला जाए। पर लोग उसको बोलते हैं कि अरे देवता भी तो सोमरस पीते हैं तो हम मदिरा पी लेंगे, हम दारू पी लेंगे तो उससे क्या नुकसान है। तो एक्चुअली देवता लोग सोमरस पीते हैं, और मदिरा का वर्ड अलग यूज किया गया शास्त्रों में, यहाँ पर बताया गया वारुणिम मदिरम पीत्वा, वारुणी नाम की, वारुणी ब्रांड की मदिरा को पीकर, दारू को पीकर ये नल कुबेर मणिग्रीव मदमस्त होकर घूमते थे। और क्या कर रहे थे, ये मंदाकिनी रिवर जो गंगा की धारा है वहां पर कैलाश पे, उसमें स्त्रियों के साथ नाच गा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, कपड़े उतार कर नग्न होकर गंगा के जल में घूम रहे थे, यहाँ पर खुद भी दारू पी रहे हैं और स्त्रियों को भी पिला रहे हैं, गाने गा रहे हैं। और जैसे ये सब क्या है, कलयुग का दृश्य है एक तरह से, कलयुग में तो बहुत ही आम बात है, फिल्मों में दिखाया जाता है हीरो हीरोइन दे आर ड्रंक एंड दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग, सो दिस इज कम्प्लीटली सिचुएशन ऑफ कलयुग। अगर कोई तीर्थ स्थानों पे, पवित्र स्थानों पे इस तरह के अपराध करता है, इस तरह के कुकर्म करता है, तो उसका जो फल है उसका रिजल्ट कहीं भी काटा नहीं जा सकता। तो शास्त्रों में क्या आता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अगर किसी दूसरे स्थान पर कोई पाप का कर्म किया गया है तो उसका जो दुष्प्रभाव है तीर्थ स्थानों पर किए गए पुण्य कर्मों के द्वारा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बट पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम ब्रज लेपे भविष्यति, अगर तीर्थ स्थानों में कोई पाप कर्म किया गया है उसका जो दुष्प्रभाव है उसको किसी भी पुण्य कर्म के द्वारा काटा नहीं जा सकता। वो जैसे अगर हम किसी जगह पर सीमेंट लगा दें तो वो सीमेंट की तरह जम जाता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग पवित्र स्थान पर कैलाश में जो शिवजी का स्थान है मंदाकिनी की धारा में वहां पर दारू पीकर मदिरा पान करते हुए स्त्रियों के साथ नग्न होकर उस गंगा की धारा में स्नान कर रहे थे, खेल रहे थे। और जैसे ही वो लोग वहां पर अपनी मस्ती कर रहे थे, उनकी आंखें लाल लाल घूम रही हैं, पूरे मदमस्त होकर नशे में, उस समय पर नारद मुनि वहां से निकल रहे थे। और जैसे नारद मुनि निकले, शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें लग रहा था कि ये इनको यही रास्ता मिला है यहाँ से जाने के लिए, कहीं और से क्यों नहीं जाते, इधर से आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये असुरी मेंटेलिटी है। एक तो असुरी मेंटेलिटी है दारू पीना, शराब पीना, मदिरा पान करना, ये भी असुरी वृत्ति है। एक्चुअली जो ये वारुणी मदिरा है, ये भी समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई। जैसे समुद्र मंथन के समय पर नेक्टर निकला, अमृत निकला, उससे पहले समुद्र मंथन के समय पर ही ये वारुणी मदिरा निकली। वारुणी क्या है, एक्चुअली ये मदिरा की देवी है। जैसे गंगा देवी, ऑल्सो देर इज अ पर्सनैलिटी ऑफ गंगा देवी, सेम वे जो मदिरा की देवी वारुणी, वो प्रकट हुई मदिरा अपने हाथ में लेकर। और उसी समय उसको देखकर असुरों ने बोला, इसको तो हम रखेंगे। और भगवान ने बोला, हाँ आप ही रखो इसको, देवताओं के काम की भी नहीं है। देवता लोग मदिरा पान नहीं करते, मदिरा पान करना असुरों का काम है। तो जो लोग मदिरा पान करते हैं, शराब शराब सिगरेट तंबाकू, जितने भी ये सब इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो लोग उनका सेवन करते हैं, एक्चुअली वो असुरों की कैटेगरी में आते हैं। तो उस समय पर ये आसुरिक वृत्ति के साथ उन्होंने नारद मुनि के ऊपर क्रोध कर रहे थे कि आपको कोई और स्थान नहीं मिला, आप यहां से क्यों जा रहे हो हमें डिस्टर्ब करते हुए। और जितनी भी अप्सराएं थी इनके साथ नदी में, उन्होंने तो शर्म के मारे वहां से निकलकर अपने आप को ढक लिया और वहां से भाग गई। पर ये दोनों बेशर्मी के साथ गंगा की उस धारा में, पवित्र धारा में खड़े रहे बिना किसी हेजिटेशन के कि कोई साधु यहाँ से निकल रहे हैं, हमें उनके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करना तो दूर, खुद को ढकने का भी प्रयत्न नहीं किया। तो नारद मुनि ने सोचा, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, अगर इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो वो व्यर्थ होगा, इनके ऊपर किसी दूसरे ढंग से कृपा करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि ने क्रोध में आकर बोला कि तुम लोग यहाँ पर नग्न अवस्था में खड़े हो, वृक्षों की तरह खड़े हो, वृक्षों का काम है, जैसा भी वेदर है, जैसा भी मौसम है, चाहे शीत है, चाहे बारिश है, चाहे ओले पड़ रहे हैं, चाहे बर्फ पड़ रही है, वो अपनी स्थिति में वैसे ही खड़ा रहता है नग्न अवस्था में। तो तुम लोग वृक्षों की तरह ऐसे खड़े हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग वृक्ष बन जाओ। और जैसे ही नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, उनका सब नशा गायब हो गया। बाहर आकर अपने आप को ढककर नारद मुनि के चरणों पर गिर पड़े, कृपा हमें और हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। तो नारद मुनि ने बोला कि तुम लोग वृक्ष तो बनोगे, पर मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं कि तुम लोग वृक्ष ऐसी जगह पर जाकर बनोगे जहां पर भगवान खुद प्रकट होंगे और भगवान तुम्हें तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया वृक्ष बनने का, पर ऐसी वैसी जगह में नहीं कि तुम डिट्रॉयट में जाकर, ट्रॉय में जाकर वृक्ष बन जाओ। तो बोला तुम नंद गांव में जाकर उस जगह पर वृक्ष बनोगे जहां पर नंद महाराज आएंगे, वहां पर अपना नंद महल बनाएंगे, वहां पर भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो उस समय से जे जो कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्री, वो दो जुड़वा वृक्षों के रूप में वहां पर खड़े थे उस आंगन में। और भगवान अभी सोच रहे हैं कि मुझे नारद मुनि ने, जो मेरा परम भक्त है, उनके वचन को खाली नहीं जाना चाहिए, तो मुझे उनके वचन को पूर्ण करना है, मुझे इन वृक्षों का उद्धार करना है। तो भगवान ने सोचा कि इनका उद्धार कैसे किया जाए। तो उन्होंने ओखल, जिसके साथ वो बंधे हुए थे, उस ओखल को गिराया और उसको घसीटते हुए उन दो वृक्षों के बीच में फंसा दिया। और एक झटके से भगवान ने उन दो यमला अर्जुन वृक्षों को, जो बहुत ही विशाल वृक्ष थे, जिनकी जड़ें इतनी गहरी थी जमीन के अंदर, एक छोटे से झटके से उस दो वृक्षों को गिरा दिया। और जैसे ही वो दो वृक्ष गिरे, खूब जोर की धड़ाम की आवाज हुई और उन दो वृक्षों के अंदर से जो दो देवता थे, वो अपना देवता के रूप में प्रकट हुए, भगवान की परिक्रमा की और उनकी स्तुति करने लगे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि अभी हम कभी आपको भूल ना पाए, हमारी जो वाणी है वो सदैव आपके गुणों को गाने में लगी रहे, हमारे जो कान हैं सदा आपकी कथा सुनने में लगे रहें, हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो पैर हैं वो आपकी सेवा करने में लगे रहें, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो आंखें हैं वो भक्तों का दर्शन करने में लगी रहें। वाणी गुणा अनुकथने श्रवणंतु कथायाम, दृष्टि सतम दर्शने। तो हमारी जो दृष्टि है वो आपके भक्तों के दर्शन के लिए ललायत रहे, हमारे जो कान हैं वो आपकी कथा सुनने में लगे रहें, हमारी जो वाणी है वो आपके गुणों का वर्णन करने में लगी रहे। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति की कि अभी आप हमें अपने चरणों में भक्ति दीजिए, हम आपको कभी भूल ना पाए, और भगवान की इस तरह स्तुति करके, भगवान की परिक्रमा करके वो लोग अपने धाम को चले गए, भगवान ने उनको अपने धाम में वापस भेज दिया। और जैसे ही ये धड़ाम की आवाज हुई, इतना जोर का आवाज हुआ, सब लोग भाग कर वहां पर आए, सब जितने और बाल गोपाल थे, नंद महाराज और ये सब गोपाल भाग कर वहां पर आए। किसी ने पूछा ये सब वृक्ष, दो वृक्ष कैसे गिर गए? तो कुछ बाल गोपाओं ने बोला हमने देखा कृष्ण ने इनको गिराया, कृष्ण ने अपनी ये ओखली को इन दो वृक्षों के फंसा कर इनको जोर से खींचा झटके से और ये दो वृक्ष गिर गए। और कोई भी उनकी बात को मानने में तैयार नहीं है, मानने के लिए वो सब बोल रहे हैं ये सब बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। और नंद महाराज ने सोचा ये कृष्ण बंधे हुए क्यों है, उनको बांधा कैसे है? कृष्ण ने नंद बाबा ने कृष्ण को उठाया, खोला और अपनी गोद में उठा लिया। और उधर से यशोदा मैया भी भाग कर आई, यशोदा मैया कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हैं, पर कृष्णा नंद बाबा की गोद के साथ चिपके हुए हैं, यशोदा मैया के पास जा नहीं रहे। उन्होंने बोला अच्छा तुमने मुझे बांधा था, अभी मैं बताता हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो यशोदा मैया ने बोला अच्छा तुम मेरे पास नहीं आओगे तो ठीक है आज से तुम नंद बाबा के साथ ही सो जाना। तो फिर कृष्णा एकदम से मैया की गोद में आ गए, नहीं नहीं मैया सोऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही। तो कृष्णा इज परफॉर्मिंग ऑल दीज वंडरफुल लीलाज, अट्रैक्टिंग द हार्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज, एंड सत्यव्रत मुनि ही इज प्रेइंग दैट ऑल माई डिजायर इज दैट आई मे रिमेम्बर यूर दिस चाइल्ड फॉर्म इन माई हार्ट, मे आई नॉट लूज दिस विजन। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरासाम के मन्ये। मेरी कोई और कामना नहीं है, मेरी सिर्फ यही एक कामना है कि आपका जो ये बाल स्वरूप है मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे, और किसी वस्तु से मुझे कोई लाभ नहीं। भगवान दामोदर की जय, दामोदर लीला की जय। बाय हियरिंग दीज पास टाइम, भगवान की इन कथाओं को सुन के बार बार श्रवण करके भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है। और अगर हम इस संसार में सुखी रहना चाहते हैं और इस संसार में से छूट कर भगवान के पास जाना चाहते हैं, तो हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। और उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए एकमात्र साधन है भगवान की कथाओं का श्रवण करना। और कथा श्रवण करते रहने से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण को बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच, आई विल स्टॉप हियर। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो ब्यूटीफुल क्लास, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी मच नीडेड, एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट इन हिंदी टू। आई हैव अ क्विक क्वेश्चन। व्हेन यू वर मेंशनिंग अबाउट सत्यव्रत मुनि सेइंग दैट ही हैज दिस डिजायर दैट दिस फॉर्म ऑफ गोपाल, दिस फॉर्म ऑफ दामोदर शुड मैनिफेस्ट इन हिज हार्ट, एंड दैट इज व्हाट इज हिज मेन गोल, एंड ही डजंट वांट टू perform the uh, now nav bhakti. So the seven forms of devotional service. But what we have been told as sadhaka, Prabhuji, so that part.
So he is saying actually jo bhakti ka koi aur bhi phal mil sakta hai navda bhakti karne ka, मुझे वो भी कोई फल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके प्रति प्रेम चाहिए. क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि लोग भक्ति करते हैं और भक्ति करने का लोगों का अलग अलग रीजन रहता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे बदले में ये चाहिए, मुझे बदले में वो चाहिए. जैसे हमारी इच्छा भी होती है कि अच्छा मुझे मेरे कष्ट दूर हो जाए या मेरे हृदय में पवित्रता आए. वो बोल रहे हैं मुझे ऐसा कुछ मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो. क्योंकि अगर भगवान हमारे हृदय में विराजमान है तो बाकी सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी.
But what I'm saying is that is the goal is Krishna Prema, but the medium to do it is the sadhana bhakti, what I've been told, right? So that is still being going to be, is that what is also being told by Satyavrata Muni?
Satyavrata Muni is not saying I am not interested in doing Navda Bhakti. He is saying कि जो भी नौ प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाला कोई भी वरदान हो सकता है, मुझे उसकी कामना नहीं है.
Yeah, I got it now. Result. Yeah, I got it now.
Yeah. He is not concerned about the result. But he is not saying that okay, I don't even do Navda Bhakti. Navda Bhakti, even remembering Krishna's pastime, hearing Krishna's pastime, that is also Bhakti, Smaranam, right? Smaranam is part of Navda Bhakti, and he is right now he is doing Smaranam. He is remembering this Leela of Krishna, so he is doing Navda Bhakti. पर वो बोल रहे हैं कि Navda Bhakti से जो भी कोई वरदान प्राप्त हो सकता है उसकी कामना नहीं है मुझे.
Yeah, got it. So this, like, I just kind of a comment on here, like what we learn also in this nectar of devotion, that all the rules and regulations are for to remember Krishna always and never forget
right.
him anytime. So that's what I think Aditya Muni is also mentioning the same thing, that whatever we do, we have Krishna there, right? I mean, that's what I understand.
Yes.
Thank you. Hare Krishna.
कि अगर भगवान पूछते हैं से तुम्हें किसी और चीज की कोई कामना नहीं है, तुम सिर्फ मेरे बाल स्वरूप को अपने हृदय में रखना चाहते हो, उसका क्या कारण है? Why you are so attracted towards my Bal Swarup? So Satyavrata Muni is saying because your Bal Swarup is so beautiful, so attractive. आपका जो Bal Swarup है वो इतना आकर्षित है, इतना सुंदर है कि मैं सिर्फ उसको देखते रहना चाहता हूँ. भगवान ने बोला अच्छा मेरा Bal Swarup इतना सुंदर है, सर तुम कैसे बोल सकते हो? So that's where the next stanza is. I just did the first four stanzas of Damodar Ashtakam. I even didn't go into the next four. So the fifth one. Satyavrata Muni says, Idante mukham bhoja atyanta nilay vritanta kundale snigdha raktescha gopya muhuschumbhitam bimba raktadharame manasya virasamalam lakshalabhe. Hey Bhagavan, aapka jo shyam rang ka mukhmandal hai, uske upar jo ghungrale baal hai, वो इतने शोभा दे रहे हैं. मैया यशोदा के द्वारा आपका मुख बार बार चुंबन किया जा रहा है. मुखश्चुंबितम बिंब रक्ता धराम में, और आपके जो होंठ है वो बिंब फल के जैसे लाल लाल है. आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजमान रहे, मुझे और किसी वरदानों की कोई और अपेक्षा नहीं है. आपका जो रूप है इतना सुंदर है, उसकी सुंदरता के ऊपर मैं आकर्षित हूं. आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरा उद्धार कीजिए. तो भगवान ने जैसे कि बोला हो कि अच्छा मैं कैसे उद्धार कर सकता हूं, मैंने किसी का कोई उद्धार किया है? तो यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं सत्यव्रत मुनि कि जैसे आपने कुबेर के पुत्रों का नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया, उनको वृक्ष की योनि से उनका उद्धार करके उनको वापस आपके लोक में भेज दिया, नारद मुनि के श्राप से उनको मुक्त कराया, उसी प्रकार आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। सो एवरी ईयर वी हियर अबाउट दिस दामोदर लीला एंड एवरी ईयर वी ट्राई टू अब्सॉर्ब अवर माइंड अवर हार्ट इन दिस दामोदर लीला। मोर एंड मोर वी हियर, मोर एंड मोर नेक्टर वी कैन डराइव आउट ऑफ दिस पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। सो कार्तिक मंथ ग्लोरी, जो कार्तिक मंथ का महिमा है, उसमें भगवान को दीप दान करना चाहिए। भगवान का जो ये विग्रह है दामोदर के रूप में, माता यशोदा के द्वारा रस्से से ओखल के साथ बांधा हुआ, उस रूप का स्मरण करते हुए, उस लीला का स्मरण करते हुए भगवान को दीप दिखाना चाहिए, और साथ में ये दामोदर अष्टकम को गाना चाहिए रोज, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। So, if anybody has any other question or comment. If not, thank you very much. We'll end here. Shridamodar ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Anant Koti Vaishnav Vrind ki jai.